نمبر کے رجسٹر میں 42 پیج پر 21.790 کا پراتہ کلاس مرلی کا دوسرا پیج کا مدھیادی چل رہا تھا, بات چل رہی تھی بچوں کے پاس جب کوئی آتے ہیں تو ان کی ہر پرکار کی خدمت کرنی چاہیے, استھول بھی تو سوکشم بھی, کیونکہ اپنے آپ آئے نا, آنے والے ہیں تو ضرور پورو جنموں کا حساب کتاب ہے, تو آئے ہیں جسمانی روحانی دونوں سیوا کرنے سے بہت خوشی ان کو ہو جائے گی. کوئی بھی آئے تو ان کو تم سچی ستیہ نارائن کی کہانی سناؤ, یہ سوکشم سیوا ہوئی. شاستروں میں تو کیا کیا کہانیاں لکھ دی ہیں, وشنو کی نابھی سے برہما نکلا, پھر برہما کے ہاتھ میں شاستر دے دیے ہیں, تو شاستر میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یادگار کہاں کی ہے؟ یادگار تو سنگم یوگ کی ہے نا. اب وشنو کی نابھی سے برہما کیسے نکلتے ہیں, اس کا جواب کیا ہوا؟ کتنا راز ہے اور کوئی ان باتوں کو کچھ سمجھ نہ سکے. تو کیا راز ہوا؟ نابھی سے تو نکلنے کی بات ہی نہیں, کہ پیٹ میں نابھی ہوتی ہے اور استھول نابھی سے کوئی نکلے تو پھر کیا بات ہے, راز کیا ہے اس میں؟ وشنو کی نابھی سے برہما نکلا, نابھی میں کیا وشیشتا ہوتی ہے؟ شریر کا جو انگ نابھی ہے اس کی کیا وشیشتا ہوتی ہے, کس کا کیندر ہے؟ شریر کا کیندر بندو, شریر کا کیندر بندو تو آتما ہے, جہاں آتما برکوٹی کا مدھی. ہاں جو نسیں اور ناڑیاں ہیں 16,000 جنہیں گوپ گوپکائیں کہا گیا ہے, جن میں کچھ لیفٹسٹ ہیں اور کچھ رائٹسٹ ہیں, کچھ نسوں میں ناڑیوں میں گندا خون بہتا ہے, سنکلپوں کا گندا خون, اور کچھ نسوں ناڑیوں میں شدھ خون بہتا ہے, رائٹ ایئر. تو دونوں پرکار کی نابھیوں کا کیندر نابھی ہے, تو 16,000 کا کنیکشن کس سے ہوتا ہے؟ وشنو مانا یگل, تو کون سا یگل ہے جس کا کیندر, جو کیندر بنتا ہے 16,000 نسو ناڑیوں کا, 16,000 گوپ گوپیوں کا, جو 16,000 گوپ گوپیاں شاستروں میں گائی ہوئی ہیں کہ بھگوان کے پیچھے دیوانے تھے, گوپ مانے گپت پرشار تھی, جو انہوں نے گپت سمبندھ جوڑنے کا پرشارتھ کیا وہ دنیا والوں نے نہیں پہچانا, اور اس سمبندھ سے انہوں نے پراپتی کی, سہج یاد اور نرنتر یاد کی. تو وہ گوپ اور گوپیاں وشنو کی نابھی کمل ارتھات نر نارائن اور ناری سے لکشمی بننے والی جو آتمائیں ہیں, نابھی کمل وہ کیندر بندو ہوئے, وہ ہے میٹنگ پوائنٹ جہاں 16,000 کے سنسکاروں کا میل ہوتا ہے. مالا ہے نا, تو مالا میں سارے ہی من کے کسی سوتر سے, کوئی سنیہ کا سوتر ہے جس سے جٹے ہوئے ہیں, तो वो स्नेह का सूत्र कहाँ मिलता है जाकर के? युगल मण के में। वो युगल मण का लक्ष्मी नारायण, और उनका केंद्र बिंदु क्या हुआ है? उनकी मन बुद्धि। तो विष्णु की नाभि कमल से कौन निकला? पहले 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 ब्रह्मा निकला। तो ये कब की बात है? संगम युग की तो बात है, संगम युग में भी किस समय की बात है? आदि यज्ञ के आदि में सबसे पहले उन आत्माओं के संस्कार एक थे, जो आदि में थे वो अंत में भी होंगे। तो नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। कौन निकला? ब्रह्मा मन बड़ी मन। फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। तो दादा लेखराज ने तो कभी शास्त्र उठाए नहीं है? क्यों उठाए नहीं? फिर यादगार कहां की है? कैसे? वही ब्रह्मा की सोल जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ओरिजिनल बनी और फिर टाइटलधारी ब्रह्मा बनी। दादा लेखराज टाइटलधारी ब्रह्मा, ओरिजिनल ब्रह्मा वो यज्ञ माता, वो दोनों ही सूक्ष्म में और साकार में निमित्त बनते हैं। किस बात के निमित्त बनते हैं? अंत में वही ब्रह्मा फिर निमित्त बनते हैं, सूक्ष्म ब्रह्मा प्रवेश करके कार्य करता है साकार शरीर में। और वो आदि माता वो भी दूसरा जन्म लेती है साकार शरीर से, उसमें भी ब्रह्मा सरस्वती की सोल प्रवेश करती है, तब नाम पड़ता है जगत अम्बा। वास्तव में ब्रह्मा है जगदम्बा। तो कौन सा ब्रह्मा? वो आदि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा किसकी नाभि से निकला? आदि में भी विष्णु की नाभि से निकला। तो एडवांस नॉलेज जब शुरू होती है तो भी किसकी नाभि कमल से निकलता है? विष्णु की नाभि कमल से। तो विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। हाथ मन, ये तो बुद्ध रूपी हाथ है, दे किसने दिए? देने वाला भी तो कोई होगा, शिव बाबा। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, ये कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ नहीं सकेगा कि शास्त्र देने वाला कौन और किसके हाथ में शास्त्र है और कैसे है। अब विष्णु की नाभि से निकलने की तो बात नहीं है, ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? ब्रह्मा पतित और विष्णु पावन, ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष। ऊपर से नीचे उतरने में टाइम लगता है, धीरे धीरे उतरते रहते हैं। और चढ़ती कला, एक सेकेंड में चढ़ती कला होती है। ये क्या विशेषता हुई, ये कैसे? अरे बच्चे खेल खेलते हैं, जब ऊपर से उतरते हैं तो जल्दी जल्दी उतर पड़ते हैं, और चढ़ने में तो उनको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो उल्टी बात क्यों कर दी? एक सेकंड में कैसे ब्रह्मा सु विष्णु बनते हैं, जिस सेकंड में निश्चय होता है तो निश्चय बुद्धि विजयंती नशा ही चढ़ जाता है। निश्चय की निशानी नशा, निश्चिंत फिर कोई चिंता नहीं रहती। जिसको निश्चय हो जाएगा उसको कोई चिंता नहीं रहेगी, और जब कोई चिंता नहीं तो स्टेज कैसी हो जाएगी, निसंकल्प स्टेज हो जाएगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। फिर कोई अहंकार देह अभिमान नहीं रह सकता ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा सो विष्णु ऐसी स्टेज बनने में लगता तो एक ही सेकंड। फिर ये 50-55 वर्ष जो निकल गए वो किस खाते में गए। ये निश्चय बुद्धि बनने की पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई है? पढ़ाई है आत्मा और परमात्मा की पहचान। कौन सी पढ़ाई है? आत्मा और परमात्मा की पहचान और सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज, जो आत्मा से कनेक्टेड है। तो वो पढ़ाई पूरी होने में टाइम लगता है, बाकी निश्चय हो जाने के बाद ब्रह्मा सु विष्णु बनने में टाइम नहीं लगता। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, सेकंड में मुक्ति नहीं, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, तुम माने कौन हैं? और कब साक्षात्कार कराया? आदि में साक्षात्कार कराया, किसको साक्षात्कार कराया? ब्रह्मा को। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, का रूप बनते हो माना विष्णु नहीं हो, विष्णु का रूप बनते हो। तो कौन हुआ विष्णु का रूप? ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप हुए, और विष्णु कौन हुए? तो उनको सेकंड में निश्चय हो गया। किनको? विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाट से रहते थे। हाँ, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। पहले कौन सा व्यापार करते थे? स्थूल रत्नों का। और अब बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। किनके आगे? ज्ञान रत्नों के व्यापार के आगे। परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। व्यापार तो तुम भी और ये भी, दोनों ही कौन सा व्यापार करते थे? स्थूल रत्नों के व्यापारी थे। और अब तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। किसे? तुम्हें। बाबा ने इनमें प्रवेश किया, इसमें नहीं कहा, इसमें नहीं, इनमें प्रवेश किया और फट से सबको छोड़ दिया। जिनमें प्रवेश किया उन्होंने फट से सब कुछ त्याग दिया। बट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। ऐसे नहीं कि इसने ही सब कुछ छोड़ा, تم نے بھی سب کچھ چھوڑا کب؟ پاسٹ میں یگی کی یاد کی بات، لیکن اس کا کلیریفیکیشن کیا دیا جاتا ہے؟ برہما نے سب کچھ چھوڑا اور جو بھاگیدار تھا اس نے نہیں چھوڑا. آج میں تو سب کی ستو پردھان اسٹیج ہوتی ہے. کیونکہ سوئی کی کٹ اترنے پر ہی باپ آتے ملتے ہیں. تم نے بھی سب کچھ چھوڑا، ندی پار کر کے آئے، بھٹی میں پڑے، کیا کیا ہوا کوئی کی پرواہ نہیں. کہتے ہیں کرشن نے بھگایا، اب کیوں بھگایا؟ بھگانے کا کارن کیا؟ اپنی لپسا پورتی کے لیے بھگایا؟ دنیا میں بھگاتے کرتے ہیں تو کس لیے بھگاتے ہیں؟ اپنے سوارتھ کے لیے بھگاتے ہیں. بھگوان نے کس لیے بھگایا؟ جن کو بھگایا ان کے کلیان کے لیے. کیا کلیان ہوگا بھگانے سے؟ بنا بھگائے کیا کلیان نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ انہوں کو پٹرا نہیں بنانے، یہ بھٹی بنی. کیا بنانے کے لیے بھگایا؟ پٹرانی بنانے. تو سب پٹرانی ہی بن جاتی. 16,000، پھر 16,000 پٹرانی کیوں نہیں بنی؟ پٹرانی 8108 ہی کیوں گائی جاتی ہے؟ یا تو شاستروں میں 8 کا ذکر آیا، 108 کا ذکر آیا، باقی 16,000 کیوں نہیں بنی؟ پٹ کا مطلب زمین، پٹ میں آ کر پڑے. پانچویں مار سے جو گرتے ہیں تو پٹ میں گرتے ہیں. اور گرے میں ہی کون؟ جو اونچے چڑھیں گے تو نیچے گریں گے بھی، اور جو اونچے چڑھیں گے نہیں تو نیچے گریں گے بھی کہاں سے؟ تو انہوں کو پٹرانی بنانے کے لیے بھگایا. مطلب یہ نہیں کہا کہ 16,000 کی لسٹ میں لانے کے لیے بھگایا، کیونکہ 16,000 کی لسٹ میں تو داس داسی بننے والے بھی ہیں. ہاں زور سے بولو. تو اس کا مطلب اوپر چڑھنے کی ساہس نہیں کرنا چاہیے. راجا بننے والا دوسرے راجیہ پر آکرمن کرتا ہے تو ہار بھی سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے. وہ اگر یہ کہے ارے چڑھائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر ہم چڑھائی کریں گے ہو سکتا ہے ہم ہار جائیں. تو ہمت بچے مدد باپ نہیں بن سکتا. سنکلپ تو ہمیشہ شبھ ہی کرنا چاہیے، ہمت تو ضرور کرنی چاہیے. پھر اگر نہیں ہوتا ہے یا جتنا جو کچھ بھی ہوتا ہے تو کیوں بھگایا؟ انہوں کو پٹرانی بنانے کے لیے. یہ بھٹی بھی بنی تم بچوں کو سور کی مہارانی بنانے کے لیے. کیا کہا؟ بھگایا کس لیے؟ پٹرانی بنانے کے لیے. پٹ میں گرانے کے لیے تو بھگایا، اور بھٹی کس لیے بنی؟ بھٹی بنی تم بچوں کو سور کی مہارانی بنانے کے لیے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب بھٹی میں جو پورا پک کے نکلیں گے، بیچ میں ٹوٹیں گے نہیں، تو وہ مہارانی بن سکتے ہیں. آدھ سے انت تک جو نبھاتے ہیں وہ مہارانی، اور جو پورا نہیں نبھاتے تو پٹرانیوں میں بھی پھر نمبر وار ہیں. اب ویکتو بانی میں بولا رادھا کا پار ٹپنا یعنی مہارانی کا پار ٹپنا پٹرانیوں کا پار ٹپنا پٹرانیوں میں بھی نمبر وار ہیں. کوئی سدا کال کا ساتھ نبھانے والی کوئی نمبر وار کب کب کا ساتھ نبھانے والی. تو تم بچوں کو سورگ کی مہارانی بنانے کے لیے بٹھی بنی. شاستروں میں تو دیکھو کیا کیا لکھ دیا ہے اور پریکٹیکل میں کیا ہوتا ہے. تو اب تم سمجھتے ہو کہ کوئی بھگوانے کی بات نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں جیسے استھول روپ میں دنیا والے بھگا کے لے جاتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے ٹٹرائے لے جاتے ہیں, ایسے بھگوان نے بھی بھگایا ہوگا. لیکن نہیں, بھگوان کو تو یوگی راج کہا گیا ہے. یوگی راج بدھ یوگ کی پاور سے آکرشت کرے گا یا کوئی استھول روپ میں کھینچے گا؟ یہ تو بدھ یوگ کی پاور ہے. تو بھگانے کرنے کی بات نہیں ہے. کل پہلے بھی گالی ملی تھی. کیوں گالی ملی تھی؟ کہ بھگایا. لوگوں نے سمجھا جیسے دنیا والے بھگاتے ہیں ویسے انہوں نے بھی یہ دھندا چالو کیا ہے. دھن کی شکتی سے, استھول شکتی سے, باہوبل کے آدھار پر بھگانے کا کام کیا. لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. کل پہلے بھی گالی ملی تھی, نام بدنام ہوا تھا. یہ تو ڈراما ہے. جو کچھ ہوتا ہے کل پہلے موافق. ابھی تم اچھی ریتی جانتے ہو کل پہلے جنہوں نے راج لیا ہے وہ ضرور لیں گے. کیا بات ہے, راج لینے کا طریقہ یہ ہوگا کوئی؟ یہ وشو کی بادشاہی لینے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ بھگایا بھگانے سے کوئی وشو کی بادشاہی ملتی ہے کیا؟ تو پڑھائی سے ملتی ہے, پھر بھگانے کی کیا بات؟ پڑھائی از سورس آف انکم, تو وہ تو گیان رتن ملتے ہیں. سورس ہے تو سورس ملتا ہے تو وہ گیان رتن ملتے ہیں. اور گیان رتنوں کو یوز کس لیے کیا جاتا ہے؟ اچھا, ان استھول رتنوں کو یوز کس لیے کیا جاتا ہے؟ بڑھانے کے لیے, صرف سکھ شانتی کے لیے. وہ جو استھول سمپتی ہوتی ہے وہ بھی سکھ شانتی کے لیے ہوتی ہے. اور یہ جو گیان رتن ہے ان کا بھی ریزلٹ استھول رتنوں سے بنے گا. جو یہاں جتنا گیان رتن دھارن کرتا ہے اتنا استھول رتن دھارن ضرور کرتا ہے. تو یہ سکھ اور شانتی جو پراپت کرنی ہوتی ہے اس کے لیے دھن آدھار بنتا ہے. مسلمانوں کے پاس دھن سمپتی اتنی نہیں تھی تو انہوں نے بھارت پر آکرمن کیے لوٹ پوٹ لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے. اس دھن کا ان کو اپیوگ وہ لوٹ لپوٹ کرنے کے لیے ایسی کیا آوشیکتا پڑ گئی؟ ہاں, دھن ہے, دھن کا اتنا کیا کریں گے؟ ہاں, کہ جتنا سکھ لینا ہوتا ہے وہ سکھ بنا دھن کے نہیں ہو سکتا. اب اس کا بھگانے سے کیا کنیکشن؟ اے? इस धन संपत्ति का भगाने से क्या कनेक्शन? साधु संत तो खुद भाग जाते हैं, वो भगाते नहीं है, क्या करते हैं? खुद भाग जाते हैं और धन संपत्ति भी छोड़ जाते हैं। और कृष्ण ने क्या किया? वैकुंठनाथ बनने के लिए भगाया। तो ये क्या अंतर पड़ा? उन्होंने गौवर्धन पहाड़ उठाया, गौ मन गौएं, कन्याएं माताएं हैं, वही गौएं हैं। गौ को जिस खूंटे से बांध दिया जाता है तो सीधी होने के कारण बंधी रहती है। तो भारत की कन्याएं माताएं भी एक प्रकार की गौ हैं। गौ बहुत सीधा है और सीधा जानवर होता है, तो ऐसी सीधी साधी गौओं का वर्धन, वर्धन माना बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी जो है वही गोवर्धन पहाड़ बताया गया। कलयुग के अंत में ये गोवर्धन पहाड़ उठाया जाता है, और उठा करके क्या होता है इसका? इसके नीचे सबको छुपा लिया जाता है। जो भी वहां के लोग थे उनको शेल्टर मिला। तो ये गोवर्धन पहाड़ है, गोवर्धन पहाड़ का मतलब ही है पवित्रता का पहाड़। जो अपवित्रता का पहाड़ बन जाता है कलयुग के अंत में, नारी जाति जितनी गिरती है उतनी ही सत्यु के आदि में नारी जाति ऊंची उठाई जाती है। तो पटराने के लिए, बनाने के लिए भगाया, ये तो भट्टी बननी थी। सो अब तुम समझते हो, जिन्होंने कल्प पहले राज्य लिया वो जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूं। मैं भी क्यों लगा दिया है? बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूं। जैसे तुम स्वर्ग बनाने के कार्य में सहयोगी बनते हो, मैं भी कल्प कल्प आकर के बनाता हूं। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया। बड़े बड़े सन्यासियों पंडितों को तुम निमंत्रण देते हो कि आकर के समझो, ये कोई स्थूल में भगाने की बात नहीं है। तुम अपने को योगी समझते हो, वास्तव में तुम्हारा योग तो है झूठा। तुम तो घर बार ही छोड़ करके भागते हो, तो योगी काहे के हुए? सच्चे योगी तो वो हैं जो घर गृहस्थ में रहते विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और परमात्मा से योग लगाते हैं। तो पंडितों को, सन्यासियों को तुम निमंत्रण देते हो कि ये भागवत आकर के समझो, ये कोई क्रिमिनल एसाल्ट नहीं है। क्या? जैसे वो जोर जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं, ऐसे ये कोई बात नहीं है। ये भोग बल की बात नहीं है, ये तो योग बल की बात। क्योंकि वो सन्यासी साधु तो ये समझते हैं, पंडित विद्वान आचार्य, कि हम बड़े योगी हैं। और दूसरों को, दूसरों सारी दुनिया को तो भोग ही समझते हैं। तो बताओ, निमंत्रण दे करके समझाओ। बाप जानते हैं, तुम समझाओ, ये बोला। और बाप जानते हैं वो समझने वाले नहीं है। क्या कहा? बच्चों को डायरेक्शन क्या दिया? बड़े बड़े सन्यासियों पंडितों को तुम निमंत्रण देते हो कि आकर समझो। निमंत्रण कौन देता है? तुम निमंत्रण देते हो कि आकर समझो। اور باپ جانتے ہیں یہ کوئی سمجھنے والے نہیں ہے. اس کا مطلب ہم کیا بدھو ہیں جو ان کو نمنترن دیتے رہے اور بلاتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ یہ رائٹ ہے اور وہ رنگ ہے. ہمارا یوگ رائٹ ہے اور تمہارا یوگ رنگ ہے. جب وہ سمجھنے والے نہیں ہیں تو نمنترن دے کے بلائیں کیوں, ہم بھی کیوں بلائیں؟ تو یہ اس لیے کہا باپ نے کہ وہ سادھو سنیاسی کو بعد میں آ کر کے سمجھیں گے. تم بچے ابھی بلاتے ہو یہ رنگ ہے, جب لاسٹ سمے آئے اور تب تم بلاتے ہو وہ رائٹ ہے. اس لیے بولا کہ تم بلاتے ہو کیونکہ تم بچوں میں تو نمبر وار ہے نا, کوئی بات کی گہرائی کو کتنا سمجھتے ہیں اور کوئی کتنا سمجھتے ہیں. جو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو ابھی بلا رہے ہیں اور ابھی تو وہ سمجھنے والے ہیں نہیں. کب تک نہیں سمجھیں گے؟ جب تک ان کے سارے جگیاسو نہیں ٹوٹ جائیں گے, سارے چیلے چپاٹے ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جائیں گے تب تک وہ سمجھنے والے نہیں. تو ان کو نمنترن کب دینا چاہیے؟ لاسٹ میں, جب ان کے سب چیلے چپاٹے چھوڑ کے بھاگ جائیں تب ان کو تم نمنترن دیتے ہو. آ کر سمجھو تو آٹومیٹک نہیں آئیں گے, سو نہیں آئیں گے. اور سورگ کے سکھ کاگمشٹا سامان ہمیں نہیں چاہیے, تم ہی رہو سورگ میں. تو ایسے کہہ دیں گے, ان کو چاہیے مان مرتبہ اس دنیا کا. اس سمے اگر ایک بھی سمجھتا ہے تو ان کی بادشاہی. ہاں جی, 31-7-90 کا پراتہ کلاس 13 نمبر کے رجسٹر میں 42 پیج کا دوسرا پیج مدھیان. تو باپ جانتے ہیں وہ کوئی سمجھنے والی نہیں ہے, سنیاسی اور پنڈت, کیونکہ اگر ایک بھی سمجھ جائے تو ان کی بادشاہی خلاص ہو جائے. ایسا تیاگ کرنے کی طاقت بھی چاہیے, ایسا تیاگ کرنے کی سنیاسیوں میں طاقت نہیں ہے. کتنے ڈھیر فالوورز ہیں, انہوں کے پاؤں دھو کر کے پیتے رہتے ہیں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہوگا, دنیا کے بھکتی مارگ میں ایسا ہوتا ہوگا کہ ان کے پاؤں دھو کر کے پیتے ہوں. یہاں تو براہمنوں کی دنیا میں تو ایسا ہوتا نہیں. کیسا کہ پاؤں دھو کر کے پیئے؟ کیا مطلب ہوا؟ بدھ روپی پاؤں کیسے دھوئے جاتے؟ بدھ روپی پاؤں بھی دھوئے جاتے کیا؟ بدھی جو ملین ہو جاتی ہے دیہ ابھیمان کے کارن, دیہ ابھیمان کی مٹی میں پڑنے سے بدھی ملین ہو جاتی ہے, وہ بدھی دھوئی بھی جاتی ہے. بھگت دھوتے ہیں, بھگت دھوتے ہیں, خاص کر کے ماتائیں ان کے پاؤں دھو کر کے پیتی رہتی ہیں. بھگت ان کے پاؤں دھوتے ہیں اور پیتے ہیں, مطلب جو گیان جل ہے اس گیان جل کو پیتے ہیں. کیسا گیان جل؟ جو ان کے پاؤں دھو کر کے پیا جاتا ہے. یعنی بدھ روپی پاؤں کو پہلے ماتائیں دھوتی ہیں اور پھر پیتی ہیں, ان ماتاؤں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. ماتاؤں کو چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں اور وہی ماتائیں ان کے پاؤں دھو کر کے پیتے, پرش بھی پیتے ہیں. کتنی انسلٹ کرتے ہیں, ये भी ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा में नूद है तो ड्रामा में नूद है तो शूटिंग पीरियड में भी नूद है कि उनके बुद्ध रूपी पांव धोकर के पीते हैं, राजाओं को भी संन्यास कराते हैं। और साधारण लोगों को ही संन्यास नहीं कराते हैं, बड़े बड़े राजाओं को भी वो संन्यास कराए देते हैं। उन्हों को भी राजा ही छोड़ जाना पड़ा, किन्हों को? राजाओं को। गोपी चंद की कहानी है ना, क्या नाम दिया? गोपियों का चंद्र। 16,000 गोपियों का चंद्र कौन हुआ? कृष्ण किशोर। तो उन्हों को भी राजा ही छोड़ करके जाना पड़ा। जाना पड़ा माना जाना नहीं चाहता था, राजा ही छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी ऐसी पड़ी, इन सन्यासियों ने ऐसा नाक कान से पकड़ा कि राजा ही छोड़ करके जाना पड़ा। कौन सी राजा ही? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। कौन सी बादशाही मिली? झूठी नहीं, शूटिंग पीरियड की तो सच्ची होती है। अलफ को मिला अल्लाह, प्रजापिता को तो अल्लाह मिल गया, और बे को मिली बादशाही। कौन सी बादशाही? ब्रह्मा बाबा को वो बादशाही मिल गई, उन साधु सन्यासियों के ऊपर सारी। लेकिन वो साधु सन्यासी इतने चालाक कि आखिरी उनको छोड़ करके जाना ही पड़ा। तो गोपी चंद की कहानी है ना, माता को विधवा बनाई देते हैं। जिन्होंने उनको अपना पति स्वीकार कर लिया, किनको? उस साकार स्वरूप को। कौन से साकार स्वरूप को? ब्रह्मा को। तो वो तो शरीर छोड़ करके चले गए, तो वो क्या बन गई? विधवा बन गई ना। माता को विधवा बनाए देते, अभी हुआ माताएं फिर उनके पांव धोकर के पीती हैं। वही माताएं फिर उन साधु सन्यासियों के पांव धोकर के पी रही हैं। किन साधु सन्यासियों के? जब भिक्षा लेने आए थे ज्ञान की, तो नीची आंखें करके आए थे, समझे? और अब वो क्या कर रहे हैं? हैं? अब उनके पांव धोकर के ऐसे पी लिए हैं कि उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट बना दी। जो नीची नजर करके ज्ञान लेते थे, वो आंख में आंख डाल करके बैठे हुए। तो ये परिवर्तन हो जाता है। पांव धोने का, पीकर पीने का मतलब क्या है? बुद्ध रूपी पांव कैसे धोकर के पीती है? कोई पात्र होता है, बर्तन, उस बर्तन में उनके पांव रखे जाते हैं। जैसे सन्यासी कहते हैं कि दुनिया तो गंगा जी को गंदा कर देती है नहा धोकर के, और हम उसमें पांव डालते हैं तो पवित्र हो जाती है। तो वो पात्र क्या हो गया? हैं? वो पात्र जो है वो जैसे कि गंगा नदी हो गई। तो ऐसी ज्ञान गंगाएं और नदियां उन पर अर्पण की जाती है। क्या? उनके अंडर दी कंट्रोल, कस्टडी में रखी जाती हैं। वो उस पे पांव रखते हैं, पांव रख करके और वो धोया जाता है। तो बुद्धि जो है, बुद्ध रूपी पांव की सारी मिट्टी किस में आ जाएगी? उसी पात्र में आ जाएगी ना। कहते हैं उल्टा और करते हैं उल्टा। कहते हैं एक कि हम गंगा को पावन बनाते हैं, और गंगा क्या हो जाती है? और ही मलिन हो जाती, उनके बुद्ध रूपी पांव जरूर साफ हो जाते हैं। तो जो बुद्ध रूपी पांव साफ होते हैं, वो बुद्ध रूपी पांव से फायदा किसको हुआ, पीने वाले को या उनको? हैं? उनको फायदा हुआ, इसलिए उनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, कश्य माने तेज, अप्पा माने पीने वाला। यानी जो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हैं, उनके पवित्रता रूपी तेज को वो पीने वाले होते, इसलिए उनका नाम रखा गया हिरण्यकश्यप। तो अभी वो माताएं फिर उनके पांव धोकर के पीती है। कहां की बात है? ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया की ही बात है। वो साधु सन्यासी अपने पांव धुलवा करके पी रहे हैं। भारत में कहा जाता है स्त्री का एक पति, भारत में तो ये कहावत है और होता भी प्रैक्टिकल आया। जब से ये साधु सन्यासी आए, शुरुआत में तो फिर भी सतो प्रधान थे, लेकिन जब तमो प्रधान बने तो इन्होंने देखो कितना अंतर कर दिया। भारत में कहा जाता है स्त्री का एक पति, सो एक पति तो सतयुग में होता है, स्वर्ग में होता है। इस नरक की दुनिया में तो एक पति होता नहीं। क्यों? क्योंकि इस्लामी आते हैं और उनके संघ के रंग में आकर के सब विचारी बन जाते। पहले दृष्टि से करप्ट होते, फिर इंद्रियों से भी करप्शन बढ़ जाता। सतयुग में तुम अमर रहते हो, अकाल मृत्यु नहीं होती है। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते, कहते हैं मैं कालों का भी काल हूं। कथाएं भी है ना, तो तुम काल पर विजय पाते। काल माना मौत, मृत्यु। एक होती है स्थूल मृत्यु, एक होती है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म मृत्यु कौन सी है? ज्ञान में चलते चलते टूट जाए। एक बार निश्चय करे कि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आ चुका है, नई दुनिया स्थापन होने वाली है, पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। और बाप को पहचान लिया, निश्चय कर लिया, और फिर बाद में भूल जाए तो क्या हुआ? जैसे मृत्यु हो गई। तो एक तो काल का अर्थ है मृत्यु, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, और एक काल का अर्थ है समय। तो दोनों प्रकार के काल पर तुम जीत पाते। माने इच्छा मृत्यु होगी हमारी, जब नहीं चाहेंगे तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। तुम कालों का भी तुम काल पर विजय पाते हो। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का भी काल हूं। तुम जाते हो अमर लोक में, जहां काल किसी को खाता नहीं। माना तुम बच्चे ऐसी स्टेज में जाते हो जहां अनिश्चय रूपी काल किसी को खा नहीं सकता। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है और दूसरा फिर दैवी गुण धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है और मेरे द्वारा तुमको फायदा होता है। क्या? रावण जब से आते हैं तब से अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते। कब से आया ब्राह्मणों की दुनिया में रावण? बाबा ने शरीर छोड़ा और जर्नल इंचार्ज बन के बैठ गए, अपने अपने प्रोविंस अलग अलग कर दिए। द्वापर से रावण आता है ना, तो द्वापर से रावण आता है, दो पुर बनाए देता है। तो मेरे द्वारा फायदा होता है, क्योंकि मैं संगठन बनाता हूं। एवर प्योर है तो संगठन बनाएगा, और एवर पतित है तो यूनिटी को तोड़ेंगे द्वापर, फिर द्वापर में से द्वापर, एक धर्म में से दो धर्म, दो धर्म में से तीन धर्म, चार धर्म बढ़ते ही चले जाएंगे। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे कि फायदा क्या है और घाटा क्या है। ये है ज्ञान रतन। कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करेगा क्या? बिरला व्यापारी व्यापार करेगा वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता है। हाँ, बेहद का बिरला, बेहद का चैतन्य मंदिर बनाता है, और हद का बिरला हद का मंदिर बनाता है। कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे, इन रत्नों से, तुम व्यापार करने आयो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार करके स्वर्ग का सौदा कर लेते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही खरीद लेते हैं 21 जन्म के लिए, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। 21 जन्म निकाल दिए तो कितने बचे? 40। 40 जन्म का मतलब क्या हुआ कि द्वापर में भी कितने जन्म हुए? 21। और फिर कलयुग में भी कितने जन्म? 20 जन्म। आधा कलयुग तक भी तुम बहुत सुखी रहते हो। तो दुख कब से शुरू होता है? इतना तो बहुत सुखी हुए, इसके बाद थोड़ा दुख। कोई बच्चे हैं जिनको शुरू होता है, तो वो कब शुरू होता है? मध्यांत में, यानी 600 वर्ष, अब से 600 वर्ष पूर्व दुख शुरू हुआ। बहुत दुख नहीं, शुरू हुआ कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं। और उसमें से भी बहुत दुख नहीं कहेंगे, बहुत दुखी कब हुए हैं? कितने साल हुए होंगे बहुत दुख शुरू हुआ? जब से औरंगजेब का राज्य आया, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तब से बहुत दुखी होते। कितने साल हो गए मुगल साम्राज्य को? कितने साल हो गए औरंगजेब को? रफीउल्लाह बैठे हुए हैं, हैं? 300-400 साल हुए। तो 400 साल पहले से वो पतन शुरू हुआ, दुख शुरू हुआ। उससे पहले तुम दुखी नहीं थे। तुम का मतलब कोई बच्चे हैं जो 60 जन्म तक बहुत सुखी रहते, फिर थोड़ा दुख शुरू होता है। 60 जन्म तक बहुत सुखी रहते हैं, फिर दुख शुरू होता है, वो भी ज्यादा दुख शुरू में नहीं कहेंगे, बाद में ज्यादा दुख कहेंगे। तो बहुत सुखी जो रहते हैं वो राजाई में सुख होता है, या जो प्रजा भरी होती है उसमें सुख होता है? सुख तो राजाई में होता है। तो मुगल साम्राज्य तो बाबर के समय से शुरू हुआ, प्रजा में भी कोई कोई साहूकार होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा, जो राज दरबार में जाकर के बैठते हैं, नजदीक जाके बैठते हैं। हाँ, नहीं वो तो तमो प्रधान समय की बात है कि राजाओं को भी लोन देते हैं बड़े बड़े साहूकार, सत्व प्रधान पीरियड में नहीं। पदम पति बनते हो, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना? क्या कहा? कोई देवताएं हैं जिनके पैरों में पदम दिखाए जाते हैं? देवियां भी हैं तो देवताएं भी। कौन सी देवी है जिसके पांव में पदम दिखाए जाते, नीचे कमल का फूल दिखाया जाता है, लक्ष्मी के पांव में नीचे कमल का फूल दे उसके ऊपर बैठी हुई है। शंकर को भी कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं कमलासन, लेकिन अर्थ थोड़े ही समझते हैं। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? कमल के ऊपर बैठने का मतलब क्या हुआ? कमल फूल समान स्थिति। तुम अभी पद्मपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहा जाकर के पावन बनाओ, आकर के पढ़ाई पढ़ाओ और फिर चले जाओ और फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं, आकर के पावन बनाओ। ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते हैं कि आकर के ज्ञान सुनाओ। क्या कहते हैं? पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। पावन रहते ही सुखधाम, शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं हो सकती है। वो तो आत्माओं का झाड़ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी किसकी होगी? शरीर की, शरीरधारियों की। शरीर को रहने के लिए स्थान चाहिए तो ज्योग्राफी भी होगी। शरीरधारियों को रहने के लिए सृष्टि चाहिए साकार, तो सृष्टि में काल भी होता है। परम धाम में काल काल नहीं हो, निसंकल्पी स्टेज में बैठे जैसे रात्रि को सोते हैं, गहरी नींद, स्वप्न की नींद नहीं। नींद भी तीन तरह की होती है, एक बहुत गहरी नींद, एक स्वप्न वाली नींद और तीसरी तीसरी नींद ऐसी है कि सो रहे हैं लेकिन नींद आती नहीं। सोने की कोशिश करते हैं, कभी थोड़ी बहुत तमो तामसी नींद। तो जो सात्विक नींद है उसमें कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई स्वप्न वगैरह नहीं आता। तो परम धाम की स्टेज भी आत्मा की वो निद्रा है जिसमें काल नहीं होता। जैसे आदमी सो करके उठता है तो पता ही नहीं चलता, अगर वो टाइम न देखे, रात्रि के अंधेरे में अंदर कमरे में बंद पड़ा हो तो उसको पता नहीं चलेगा रात्रि में कि कितना टाइम मैं सोया। घड़ी देखेगा तब पता चलेगा। तो ऐसे ही परमधाम से जब उतरती है आत्मा तो टाइम शुरू होता है। उससे पहले टाइम, टाइम की लंबाई का पता नहीं रहता। तो काल भी चाहिए और काल के आधार पर, समय के आधार पर हिस्ट्री चलती है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी साकारी दुनिया की है, परम धाम की स्टेज में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती। वो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये तो तुम जान गए हो। सूक्ष्म वतन को उड़ाई दिया, मूल लोक दो ही हैं, स्थूल लोक और मूल वतन। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं। नहीं, डायनेस्टी का मतलब है किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड, जैसे कहते हैं वैसे लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड। वृद्धि तो होती है ना, फिर द्वापर में वो ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं कि परमात्मा ही पूज्य बनता है और परमात्मा ही पुजारी बनता है, ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो क्या रंग कहते हैं या इसमें कुछ यथार्थता है? जो भी भक्ति मार्ग में शास्त्रों में कहते हैं वो यादगार कहाँ किए? तो संगम युग में कैसे परमात्मा पूज्य बनते हैं और फिर पुजारी बनते हैं? हाँ, परमात्मा सुप्रीम सोल पूज्य पुजारी नहीं बनता है, हैं? प्रजापिता वाली सोल शूटिंग पीरियड में पहले पूज्य पन्ने का पार्ट बजाती, फिर संग का रंग लगने से कुछ न कुछ शक्ति क्षीण तो होगी, अवस्था नीचे आने की शूटिंग होगी, तो फिर पुजारी बन जाते देवियों के। देवियों की पुजारी कौन से युग में होते हैं? कलयुग में, संगम युग में नहीं। हाँ, संगम युग में शूटिंग पीरियड में होंगे। तो पूज्य सो पुजारी बनते हैं, फिर मनुष्य मनुष्य कह देते हैं परमात्मा के लिए। तो परमात्मा पूज्य पुजारी कभी नहीं बनता, वो तो सुप्रीम सोल है, सदाशिव है। पूज्य पुजारी कौन बनता है? प्रजापिता की सोल पूज्य और पुजारी पने का पार्ट शूटिंग पीरियड में बजाती है। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, तो ऐसे ही उसके लिए पूज्य और पुजारी कह दिया। सर्वव्यापी कैसे होता है? शास्त्रों में परमात्मा को सर्वव्यापी भी कह दिए, तो ये कहां की बात है? कैसे? सुप्रीम सोल सर्वव्यापी नहीं होता, वो तो परम धाम वासी ही रहता है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उसका संग का रंग 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का हिसाब किताब है, क्योंकि 500 करोड़ भी उसके बच्चे हैं। तो हर बच्चे के संसर्ग संपर्क में टाइम टू टाइम उस बाप को आना पड़ता है। सतयुग के आदि में श्रेष्ठ बच्चों का संग, और कलयुग के अंत में जो अंत में उतरने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके साथ उसका विशेष हिसाब किताब, क्योंकि 500 करोड़ उसके बच्चे हैं ना। तो बच्चे बाप के संपर्क में नहीं आएंगे क्या? तो ऐसे कह देते हैं कि कीड़ों में, मकोड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में 84 लाख योनियों में आत्मा जन्म लेती। तो सब में संसर्ग संपर्क किसका होता है? प्रजापिता का, क्योंकि 500 करोड़ का बाप है ना। बाकी कोई आत्मा 84 लाख योनियों में जाती नहीं है। तो इन बातों को तुम समझते हो, दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है और किसके लिए ये बात लागू होती है। आत्माओं में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में परम कौन है? प्रजापिता, इसलिए उसको परमात्मा कह दिया। वास्तव में कोई प्रजापिता परमात्मा या भगवान होता नहीं है। भगवान तो वास्तव में कौन है? गॉड फादर तो एक शिव है, सुप्रीम सोल है। आधा तुम कल्प तुम गाते आए हो ऊंच से ऊंच भगवान, और अब भगवान वाच ऊंच से ऊंच बच्चे। 63 जन्म हमने कहा कि भगवान ऊंचते ऊंचे, और अब भगवान क्या कहते हैं? मैं ऊंचते ऊंच नहीं बनता हूं, क्योंकि ऊंच और नीच का सवाल इस आकाश सृष्टि पर है, तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बनते हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए, ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। यहां तो सब रह नहीं सकते क्या? कोई गृहस्थी ये कहे कि बाबा हमें सरेंडर कर लो है? तो बाबा सरेंडर कर ले है? बाबा सरेंडर कर लेंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे जो पैदा किए हैं, ये हिसाब किताब तो तुम्हारा है या बाबा का है? उन आत्माओं को परवरिश करने का किसका हिसाब किताब है? आत्माओं का हिसाब किताब है। तो अपना हिसाब किताब तुम पूरा करो, फिर आकर के सरेंडर बनो। ये थोड़े ही कि तुम बाल बच्चों का भी बोझ बाबा के ऊपर रख दो। सरेंडर तो तुम हो रहे हो कि तुम सारे अपने कुनबा गोता को सरेंडर करोगे है? आत्मा को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो आत्मा आपके पास जन्म लेकर के आई है उसने आपके कर्मों के ऊपर विजय पाई है। जहां जीत वहां जन्म होता है। क्या माँ बाप बच्चे की टट्टी पेशाब साफ करते हैं तो ऐसा सौभाग्य उस आत्मा ने कहां पाया, कहां से ये प्रारब्ध पाई? पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं उस बच्चे ने जो उन माँ बाप से अपनी चट्टी पेशाब साफ कराने के निमित्त बनता है, तो वो काम बाबा को सौंपोगे? हैं? कर्म तुम करो और भोगे बाबा, वो सुप्रीम सोल तो नहीं भोगेगा, फिर भोगेगा कौन? प्रजापिता को भोगना पड़ेगा। तो ऐसी अजलियत मत करो, हैं? और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अपराध करे कोई और फल पाए कोई और, नहीं तो उसका भी पाप चढ़ेगा। ये भी अन्याय हुआ ना भाई, किसी ने चोरी की और जिसने चोरी की उसको दंड दिया नहीं, और दंड दे दिया साहूकार को, जैसे आज की पुलिस करती है क्या? जो चोरी करते हैं वो तो चोरी करके भाग जाते हैं, जो रिपोर्ट लिखाने जाता है उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखते और पिटाई करके भगा देते हैं। ब्राह्मणों के परिवार की दुनिया में शूटिंग हो रही है? तो यहाँ तो सब रह नहीं सकते क्या? यहाँ सबको नहीं रख सकते, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े क्या? सब रहने लग पड़े तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, नीचे से ऊपर तक, नीचे से लेकर आबू रोड से लेकर के ऊपर तक माउंट आबू तक, कहां से कहां तक? आप कहेंगे कि यहां तो ना आबू रोड है और ना माउंट आबू है, तो वो बात वहां लागू होती है, यहां तो नहीं लागू होती है? यहां भी लागू होती है, यहां भी एक शहर है कायम गंध। कौन सा युग होता है जिसमें गंध कायम बनी रहती है? हैं? कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में गंध कायम नहीं होती है। तो नीचा लोक हुआ ना, वो नीचा हुआ आबू रोड। आबू रोड का मतलब आ बू, बू माना बदबू, जहां से सारी बदबू आती है। तो आप कहां होकर के आते हैं? स्टेशन तो इधर भी है, इधर भी सड़क गई है, यहां से भी ट्रेन जाती है, और स्टेशन इधर भी है, यहां से भी ट्रेन जाती है, और स्टेशन कंपिल में भी है, लेकिन आप कहां से होकर के आते हो? कायमगंज से। तो आबू रोड से लेकर कायमगंज है, वो रोड का नाम क्या है? आबू रोड। और आबू रोड तो हुआ कायम गंध, माने कलयुग की गंध जो हमेशा नीचा ही स्टेज है, नीची स्टेज वाला। और माउंट आबू, माउंट आबू माने हैं पहाड़, कहे का पहाड़ आ बू, जहां वो तो कायम गंदी है सिर्फ, लेकिन जहां सारी बदबू का पहाड़ आकर के इकट्ठा होता है। क्यों ये क्यों कह दिया? जहां भगवान आया हुआ हो वहां बदबू का पहाड़ आकर के क्यों इकट्ठा होगा? हैं? भगवान के ऊपर तो फूल चढ़ाने चाहिए, कि आपको धतूरे चढ़ाने चाहिए, कांटों वाले फल चढ़ाने चाहिए, लेकिन ये नियम है, भगवान आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए, तो पतितों को पावन बनाने के लिए आएगा तो पतित ही आकर के इकट्ठे होंगे, जन्म जन्मांतर के यह पावन आत्माएं आकर की इकट्ठी होंगी, जरूर पतित आत्मा, बदबू वाली आत्माएं, जन्म जन्म के विकारी राजाएं, रानियों की भी बात नहीं, विजयमाला नहीं आके इकट्ठी होगी क्या? पेशेंट होंगे तो नीचे से लेकर माने आबू रोड से लेकर के और माउंट आबू तक मकान बनाने पड़े क्या? या तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े नीचे से ऊपर तक, यह भी तुम एक दिन देखेंगे क्या? कायमगंज से लेकर कंपिल तक सारा रोड भरेगा, माना आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक चारों तरफ नीचे से ऊपर तक मकान ही मकान होंगे जिसमें ब्राह्मण निवास करेंगे। जब विनाश होगा तब ऐसा होगा।